ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के घर में जब ऐसे विशेष योग तपस्या के प्रोग्राम के लिए पहुंचते हैं तो हमारा लक्ष्य ही होता है कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो और जो परिवर्तन हम स्वयं में लाना चाहते हैं वो परिवर्तन करना हमारे लिए सहज हो जाए। हम सब का लक्ष्य है बाबा के समान बनना और बाबा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के जो तीन शब्द बाबा ने कहे वो हमने सुने, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो लक्ष्य तो हमारा भी यही है कि हम बाप समान यानी शिव बाबा के समान निराकारी बने, ब्रह्मा बाबा के समान निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो कैसे बाबा ने ये पुरुषार्थ किया और कर्मातीत बने? बाबा तो हमेशा कहते हैं फॉलो फादर करो, और किसी को नहीं देखना है, सिर्फ एक बाबा को ही देखेंगे। बाबा ने कैसे संकल्प, बोल और कर्म किए तो हमारे लिए वो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कैसे निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ किया, हमेशा सुनते हैं हम। जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने अपनी आत्मिक स्थिति और शरीरी स्थिति बनाने की कितनी मेहनत की, और हम मुरली भी सुनते हैं तो कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिस दिन बाबा हमें देही अभिमानी बने उसके लिए न कहते हूं। आज की मुरली में भी बाबा ने कितना कहा देह अभिमान और देही अभिमानी स्थिति। तो हम पुरुषार्थ तो करते हैं, योग करते हैं, तब अपने को आत्मा समझते हैं, देह से न्यारा अनुभव करते हैं, लेकिन सारा दिन जब कर्म करते हैं तो फिर हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। कभी कभी बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं क्योंकि आदत है, 63 जन्मों के हमारे संस्कार हैं देह अभिमान के, तो वो कभी हमें देह अभिमान में भी ले आते हैं। तो जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। देह अभिमान विकारों को जन्म देता है, तब फिर कई बार हमें ये संकल्प भी उठता है कि हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार सब कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों गुस्सा आ जाता है, क्यों मन अशांत हो जाता है, क्यों हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, जिसको बाबा कहता है क्योंकि देह अभिमान में आने से ये पुराने संस्कार फिर से इमर्ज होने लगते हैं। तो बाबा कहता है कि हमारा देह से न्यारा होने का अभ्यास इतना नेचुरल होना चाहिए, जैसे रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा आना और जाना। देह में आए कर्म करने के लिए, कर्मेंद्रियों से कर्म किया और कर्म समाप्त हुआ और देह से न्यारे हो गए, यानी जब चाहे हमने शरीर से कार्य किया। या जिसको बाबा कहता है कि जब चाहे हम आवास में आ जाएं और जब चाहे हम आवास से परे हो जाएं। तो देह रूपी वस्त्र हमारा टाइट न हो, इतना हल्का हो कि सहज हम देह से न्यारे हों, और उसके लिए हमें मुक्त होना आवश्यक है। अगर कोई भी बंधन होगा, जो बाबा ने रविवार की मुरली में सुनाए, चाहे वो हमारे स्वभाव संस्कार का बंधन है, देह के संबंधों का बंधन है, खुद देह का बंधन है, कर्म का बंधन है, प्रकृति का बंधन है, कोई भी बंधन अगर हमें खींचता है तो हम देह से न्यारे सहज नहीं हो सकेंगे। और मुझे याद है एक बार बाबा ने कहा था, तब दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी थे, तो बाबा ने कहा था कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट, नहीं तो 2 मिनट। बाबा ने कहा इतना समय तो सबको मिलता है, कई कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं। अभी भी जैसे बाबा ने डॉक्टर से बात की ना संडे की मुरली में, तो बाबा ने कहा कि भले बिजी रहते हैं लेकिन जो पूरा बुद्धि लगाने का काम है वो हमेशा नहीं होता है, बीच बीच में बुद्धि जरूर फ्री होती है और कहीं ना कहीं जाती है, तो जब और कहीं जा सकती है तो क्यों नहीं हम बुद्धि को थोड़े समय के लिए परम धाम में ले जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए आत्मा की स्थिति में या शरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो वो अटेंशन देने की बात है ना? और अटेंशन का भी टेंशन नहीं। तो ये मेहनत हमें अभी ही करनी पड़ती है, इसको बाबा कहते हैं ना थोड़े समय की ये मेहनत हमें जन्म जन्मांतर के लिए राज्य अधिकारी बना देती है, क्योंकि आत्मा तो मालिक है ना, आत्मा शरीर की मालिक है, और वास्तव में तो हम आत्मा हैं, शरीर तो आत्मा धारण करती है, लेती है। तो वो जो नेचुरल है उसको हम भूल गए और देह भान में हम जल्दी आ जाते। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा ये अभ्यास कितना पक्का हुआ है। और बाबा कहता है यही अभ्यास अंतिम पेपर में आपको पास विद ऑनर बनाएगा, कितना जल्दी आप हलचल वाली परिस्थितियों में भी न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जो परिस्थितियां होंगी वो कितना हलचल में लाने वाली होंगी हम समझ सकते हैं। अभी भी हमने रिहर्सल की, जब कोरोना की बीमारी चल रही है दुनिया में, खत्म तो नहीं हुई है, तो हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं कि परिस्थितियां कितना मन की स्थिति को हलचल में ला सकती हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी अचल अडोल एक रस हम कब रह सकते हैं, जितना हमें न्यारा होने का अभ्यास होगा। और बाबा के बच्चों ने ये अनुभव भी किया कि हम जिस तरह से सामना कर सकते हैं दुनिया वाले, उसी में भय में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें जो ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ाई है और खुद बाबा की शक्तियां हमारे साथ हैं, उसके कारण हमारे लिए कितनी भी विकराल परिस्थितियों, पहाड़ समान बाबा कहता है स्थिति है, लेकिन पहाड़ भी क्या हो जाता है, राई बन जाता है, यानी वो सूली से कांटा हो जाता है, लेकिन वो अभ्यास हमारा पक्का चाहिए, उस पर हमारा पूरा अटेंशन चाहिए। और जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो आत्मिक दृष्टि जो है वो शुद्ध दृष्टि है, हम स्वयं को भी आत्मा समझते हैं और जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनको भी हम आत्मा देखते हैं, तो आत्मिक भाव और भावना रहती है ना, आत्मा भाई भाई है, तो उनको भी फील होता है हमसे ये कि इनकी जो दृष्टि है वो न्यारी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि मस्तक में ही देखकर बात करो, मस्तक में आत्मा को देखो, देह की तरफ दृष्टि ही न जाए। और जब आत्मिक स्थिति है तो रूहानियत होती है, हमारे चेहरे पर वो रूहानियत की झलक, और रूहानियत के साथ साथ प्यूरिटी के भी वाइब्रेशन फील होते हैं। जो भी बाबा के बच्चे हैं उनमें रूहानियत है ही है, भले वो नंबरवार है, किसी के लिए हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष में वो रूहानियत दिखाई देती है, और उसी अनुपात में फिर वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस भी अपने आसपास महसूस कराते हैं। तो जो भी संपर्क वाली आत्माएं हैं उनकी नेचुरल सेवा होती है, जिसको बाबा कहता है चलन के द्वारा सेवा करना। आप कुछ कहते नहीं हैं, जहां भी आप कार्य करते हैं, जहां परिवार में गृहस्थी में रहते हैं, आपके वाइब्रेशंस, क्योंकि आत्मिक गुण प्रकट होते हैं ना। आत्मा माना आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र है, आनंद स्वरूप है। तो वो स्वरूप हमारे व्यवहार में आए उसके पहले वाइब्रेशंस में, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना जिसको बाबा कहता है, वो वायुमंडल होता है हमारे चारों तरफ। तो वो आत्माएं फील करती हैं कि इनसे बात करते हैं तो मन शांत हो जाता है, इनसे मिलते हैं तो मन में कोई दुख होता है वो हमारा दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारी हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, उसके प्रति शुभ भावना, आत्मिक भाव और भावना क्या है, यही है। कैसी भी आत्मा है हमारी, तो उनके प्रति शुभ भावना है, कल्याण की भावना है। तो अशांत करने वाली स्थितियों में भी या शांत करने वाली आत्माएं भी हमसे वो शांति का अनुभव करें, तभी तो हम शांति के सागर के बच्चे हैं। शांति के सागर के बच्चे बाबा कहते हैं आप शांति देवा हो। तो वो तब जब हमारी वो स्थिति निरंतर होती है तो हम ये नेचुरल सेवा करते हैं, चलन के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और खासकर जो हमारे समीप संबंध में होते हैं उनको तो हम मुख से ज्ञान देने जाएंगे तो वो हमारा ज्ञान सुनते भी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को देख करके, हमारी स्थिति को देख करके वो जरूर मन ही मन प्रभावित होते हैं। जिसको बाबा कहता है कि वो रूहानियत से आत्माएं आकर्षित होती हैं। और जब आत्मिक स्थिति है तब हमारा योग पावरफुल होता है। बाबा कहते ही हैं आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, ये राजयोग है। देह समझकर तो हम भक्ति करते आए तो परमात्मा से तो मिलन नहीं हुआ हमारा, लेकिन वो निराकार है, जब हम भी निराकार स्थिति में स्थित होते हैं तब हमारा मिलन बाबा के साथ होता है। तो जब भी हम योग में बैठेंगे तो सहज हमारी एकाग्रता हो जाएगी, बाबा के साथ परम धाम में, बीज रूप स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में, वही अशरीरी स्थिति में, हम जितना समय मन को स्थित करना चाहें। अगर मैं चाहूं कि एक घंटा मुझे बाबा के पास लगन में मगन, बाबा के लव में लीन होकर के रहना है, तो चेक करें अपने आप को, रह सकते हैं? अभी बाबा ने मुरली चलाई ना पीछे, जो रिवाइज अव्यक्त मुरली चलती है, मन जीत बनना है। मन जीत बनने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा जितना समय बाबा की याद में मन को स्थित करना चाहे और जिस स्थिति में स्थित करना चाहे, क्या हम कर सकते हैं? वो एकाग्रता है। तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं? साधारण योग करते हैं। अगर देह अभिमान में है तो हमारा योग साधारण ही होगा। हम बाबा से रूरिहान करेंगे, अपने समाचार सुनाएंगे बाबा को, ये हुआ वो हुआ, जो भी कोई भी हमारी समस्या है वो कहेंगे, तो जरूर बाबा से हमें शांति मिलती है, वो सुख भी मिलता है, बाबा से शक्ति भी मिलती है। लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, वो तो जब तक योग अग्नि हो, अग्नि में ही कोई चीज भस्म होती है। योग अग्नि हो, वो पावरफुल योग हो, ज्वालामुखी योग हो, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमारे संस्कार बदलते। नहीं तो हम देखते हैं 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार ऐसे हैं कि वो संस्कार बदलते ही नहीं है। और हमारे साथ वाले भी कई बार हमें सुना देते हैं उन व्यवहार को लेकर के, कि आप जाते हो वहां लेकिन क्या कहेंगे, क्यों नहीं बदल रहे। ज्ञान योग की शक्ति से दब जाते हैं, थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर से इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि हमने लगन की अग्नि में उन्हें भस्म नहीं किया। तो सदा काल का परिवर्तन नहीं होता है, तो इसीलिए बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं कि हमारे अनादि संस्कार कब इमर्ज रूप में रहेंगे ना। वो तो विकारों के कारण ही इमर्ज होते ना पुराने संस्कार, तो विकार पूरी तरह से दब जाएं, पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, वो तभी होगा जब आत्मा की आदि अनादि स्मृति हमें रहेगी। और जितना हम अशरीरी स्थिति के अभ्यास को निरंतर करते हैं, उतना ही हम कर्म भोग को भी सहज पार कर लेते हैं। कर्म भोग हम सबके सामने आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। किसी को तन के रोग के रूप में आते हैं ना, तन में कोई ना कोई बीमारी, किसी को संबंधों के टकराव के रूप में या संबंधों का हिसाब किताब आपस में, उसमें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, संबंधी विघन डालते हैं। बाबा कहते हैं ना, ये हिसाब किताब है हमारे, हमें चुकतू करना है। कोई आत्मा जो है वो आपके लिए, आप कितना भी उसके लिए अच्छा करो, विघन रूप है ही है, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या है, हमारे हिसाब किताब है कि जरूर हमने उन 63 जन्मों में कहीं ना कहीं उन आत्माओं के साथ ऐसा व्यवहार किया है जो अभी वो चुकतू कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों को मानसिक कष्ट के रूप में भी हिसाब किताब आते हैं, धन की परेशानी के रूप में भी, जैसे अभी कोरोना के टाइम में कितना लोगों ने धन के संबंध में भी कष्ट उठाया। तो किसी ना किसी रूप में जब हिसाब किताब आएगा तो वो हमें फील ना हो, महसूस ना हो, जैसे अभी हमने बात की कि पहाड़ जैसी स्थिति है लेकिन वो रुई जैसी हो जाए, सहज पार हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए सूली से कांटा हो गया। तो कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करने वाले, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो बाबा की दुआएं हमारे साथ होती हैं, और जब बाबा की दुआएं हैं, बाबा की शक्तियां हैं, हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है, तो परिस्थिति हमें परिस्थिति लगती ही नहीं है, स्वस्थिति से वो परिस्थिति सहज पार हो जाती है। तो ये हमें देखना है कि ये आने ही हैं, हम सबको ये हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करके जाना है। अगर पूरा चुकतू नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा? बाबा कहता है कि सजा खानी पड़ेगी, और सजा खानी पड़ेगी तो फिर पद कम हो जाएगा। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना। तो जब हम चाहते हैं कि हम वही नंबर वन पद को प्राप्त करें, तो फिर ये हिसाब किताब तो यहाँ चुकतू करने ही है। तो चाहे जिस भी रूप में वो हमारे सामने आए, लेकिन बाबा मेरे साथ हैं। और जब मेरी स्वस्थिति पावरफुल है, स्वस्थिति माना आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति कौन सी है, स्व की स्थिति आत्मिक स्थिति है, वो पावरफुल है, तो वो हिसाब किताब हमें हिसाब किताब लगते ही नहीं है। जैसे कोई शरीर से शक्तिशाली होता है तो थोड़ी बहुत बीमारी उसको बीमारी लगती नहीं है, जो कमजोर होता है उसको थोड़ा भी ज्यादा बड़ी बात लगती है। ऐसे ही हम ये समझें कि ये तन बाबा ने मुझे अमानत के रूप में दिया है। हमने बाबा को तन मन धन समर्पित किया है ना, हम बाबा के ऊपर बलिहार गए हैं। तो बाबा को तन मन धन समर्पित किया माना ये तन बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, ये मेरा मर्जीवा जन्म है, ये मेरा तन नहीं है, बाबा का तन है। तो जब ये भाव हमारा रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, बाबा ने शिव बाबा को अपना तन दिया ना, रथ था बाबा का, तो बाबा ने फिर कभी नहीं समझा कि ये मेरा तन है, ये शिव बाबा का रथ है। तो हमेशा समझे कि शिव बाबा ने सेवा अर्थ मुझे ये तन दिया है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम लौकिक कर्म कर रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे हम अपने है ना काम धंधा करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बाबा की सेवा अर्थ हम इस तन को प्रयोग कर रहे हैं, भाव ये रहना चाहिए। तो बाबा जिम्मेवार है। जब हमने बाबा को तेरा कह दिया तो फिर बाबा की जिम्मेवारी हो जाती, हम हल्के हो जाते हैं, तो हमारे हिसाब किताब भी सहज हल्के हो जाते हैं। और हमें ये भी समझना है कि इस पुरानी दुनिया में हम मेहमान हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुनिया तो, पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, हमें घर जाना है। हमारा असली घर कौन सा है, दुनिया तो नहीं जानती ना, लेकिन हम तो जानते हैं कि मेरा असली घर कौन सा है। तो इस दुनिया में हम थोड़ा समय है, हमें मालूम है। तो कोई भी स्थान पर हम थोड़ा समय होते ना, तो उससे हमारा कोई लगाव नहीं होता, हमें पता है कि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं, यहाँ हमें रहना ही नहीं है, यहाँ से तो हमें जाना है। तो इस दुनिया से भी हमें जाना है, तो फिर उससे न्यारा होना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो बाबा का जैसे अभ्यास था, हम सुनते हैं हमारी दादियों से, हमारे बड़े भाई बहनों से जो दादियों के समीप रहते हैं, दादियां कहते थे कि जब हम बाबा के पास जाते थे और सोचते थे कि बाबा को मिलेंगे, ये सुनाएंगे, ये पूछेंगे, लेकिन जब बाबा से मिलते थे और बाबा की दृष्टि मिलती थी हमको, तो बाबा की दृष्टि से ही हम जैसे गुम हो जाते थे, यानी अशरीरी स्थिति में चले जाते थे। फिर ये याद ही नहीं रहता था कि ये बाबा से पूछना है, ये बाबा को कहना है, और बाद में लगता था कि जो बाबा से पाना था वो तो मिल गया। बाबा की दृष्टि से ही हम निहाल हो गए, भरपूर हो गए, अब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा अशरीरी बना देते थे, खुद की अशरीरी स्थिति से जो सामने वाली आत्मा को दृष्टि देते थे, उससे भी वैसा ही अनुभव बाबा कराते थे। और बाबा कहता है बच्चों को भी अंत समय में आत्माओं को ऐसा अनुभव कराना है, और वो तब करा पाएंगे जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। हम सोचेंगे उस समय तो हम हो जाएंगे ना आत्मिक स्थिति में स्थित, हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत में हमारे पास वो शक्तियों का स्टॉक होगा जो किसी भी आत्मा को जो जरूरत है वो हम उसको अनुभव करा सकें, जैसे बाबा अनुभव कराते थे। तो हम सभी तो बाबा के साथ स्थापना में मददगार बच्चे हैं ना। और अमृत वेले का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है अशरीरी स्थिति के अभ्यास का। उस समय हमारे मन की स्थिति का भी सहयोग होता है और साथ साथ प्रकृति का भी हमें सहयोग होता है। बस ये है कि माया उसमें आलस्य बेलापन लाकर के विघन रूप बन सकती है अमृत वेले के टाइम, लेकिन अगर हम अलर्ट रहते हैं और लक्ष्य रख करके योग करते हैं तो बाबा के साथ परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में बीज रूप स्थिति में स्थित होना बहुत सहज होता है। उस समय हमारी लाइन क्लियर होती है क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं सोई हुई होती हैं। तो अगर हमने अमृत वेले अनुभव कर लिया तो फिर सारा दिन हमको मदद मिलती है, बाबा की वो मदद हमारे लिए सहज बना देती है। तो हमें अटेंशन देना है कि हमारी अशरीरी स्थिति देही अभिमानी स्थिति जितना हो सके निरंतर और नेचुरल बन जाए, जो हमारे बाबा ने दादियों ने पक्का अभ्यास किया। अगर हम निराकारी हैं तो निर्विकारी बनना भी आसान है, देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। अगर हम आत्माभिमानी हैं, आत्मिक स्थिति में हैं, तो जैसे कहा आत्मा के गुण स्वतः इमर्ज होते हैं तो विकार समाप्त हो जाते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या जो भी और भी उसके साथी हैं, तो मोटे रूप में हम इन विकारों से सहज मुक्त हो जाते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें कोई विकारों से मुक्त होने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम ज्ञान समझते हैं और बाबा से योग लगाना शुरू करते हैं तो राइट क्या है रॉन्ग क्या है वो समझ में आता है। और हिम्मते बच्चे मददे बाप, और हम उन विकारों से मुक्त होने लगते हैं। लेकिन जो विकारों के अंश वंश हैं, जो माया सूक्ष्म रूप धारण करती है, जिसे हम कई बार परख भी नहीं पाते, हम उसको राइट ही समझते हैं, उसको विकार भी नहीं समझते हम, ऐसा हो जाता है। उस रूप में माया धोखा देती रहती है, यानी अपने अपने उसमें वश में रखती है। तो जैसे काम विकार के लिए कहते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दुनिया जिसको असंभव समझती है हमने प्रवृत्ति में रहते हुए उसको संभव करके दिखा दिया। सन्यासी भी जिसे मुश्किल कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए आप जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, वो नहीं मानते हैं ऐसा, तभी तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे वो असंभव को संभव करके दिखाते हैं। पर काम विकार का अंश कैसे प्रकट होता है, वैसे ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन कोई ना कोई आत्मा के प्रभाव में कभी ना कभी आ जाते हैं। प्रभाव में आने का मतलब उनके गुण, उनकी कलाएं, उनका व्यक्तित्व, या अगर देह अभिमान के आकर्षण में आने का संस्कार है तो किसी की सुंदरता से प्रभावित होना, या उनकी सेवा करने का तरीका, उनकी पालना देना, उनका स्नेह देना, सहयोग देना, अपनापन महसूस कराना, कई प्रकार के गुण आत्माओं में होते हैं, चाहे वो लौकिक में हो चाहे अलौकिक परिवार में हो, क्योंकि हम तो सभी तरह की आत्माओं के संपर्क में आते हैं। तो जो भी हमें कुछ ऐसे गुणों का अनुभव कराता है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होते हैं तो झुकाव में आते हैं। झुकाव में आने का मतलब उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा समीप आने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जैसे कहते हैं इनसे बात करना अच्छा लगता है, इनसे मिलना अच्छा लगता है। अब थोड़ा ज्यादा बात करना शुरू करेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो गया। इसको बाबा कहता है स्नेह है तो सबसे स्नेह है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा में गए तो वो काम विकार का अंश हो जाता है और फिर लगाव में आ जाते हैं, प्रभाव झुकाव और फिर लगाव। और लगाव की निशानी क्या है, जीवन में कोई भी समस्या आएगी ना, कोई उलझन वाली बात होगी तो कौन याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा, जिससे लगाव है वो आत्मा पहले सामने आ जाएगी, उसको याद करेंगे, उससे बात करेंगे। तो बाबा कहता है बाबा को तो भूल गए ना, अब आपने जो भी संबंध जोड़ा उस आत्मा से, चाहे उसको दोस्त बनाया, चाहे साथी बनाया, जो भी, तो उतना वो संबंध बाबा से कम हो गया। तो कई बार कई भाई बहने क्या कहते हैं कि भगवान तो निराकार आकार है ना, तो बाबा को चलो हम दिल की बात सुनाते भी हैं, लेकिन जवाब तो नहीं मिलता है, तो साकार में तो कोई चाहिए जिसको हम अपने दिल की बात कह सकें या उसका हम सहयोग ले सकें, कोई तो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कहेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो चेक कर लेना अपने आप को कि चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान जब भक्तों को भी भक्ति का फल देते हुए ये अनुभव करा सकते हैं, तो क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को अनुभव नहीं करा सकते, निराकार आकार होते हुए भी साकार जैसा अनुभव करा सकते हैं। और बाबा खुद निमित्त बना देता है किसी को, आप बाबा के ऊपर छोड़ दो, हम सब इन चीजों के बहुत अनुभवी हैं, ऐसे नहीं कि हमको अनुभव नहीं होते हैं बाबा के, होते हैं कि बाबा कैसे समय पर, मुश्किल के समय पर जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कैसे बच्चों के लिए हुजूर हाजिर हो जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा को हाजिर होने में कितना समय लगता है, एक सेकंड से भी कम का समय लगता है, लेकिन वो निश्चय चाहिए हमारा। सर्व संबंध हमारे बाबा से है, एक है हम जानते हैं और एक है हम अनुभव करते हैं। तो अगर हमें कोई आत्मा की तरफ बुद्धि जाती है, इसका मतलब बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव हमने अभी तक नहीं किया है, इसलिए उस संबंध में वो कोई ना कोई आत्मा हमें खींचती है, आकर्षित करती है। तो यहां एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा कहता है देखो आत्मा में गुण है, विशेषता है, जरूर होंगे ना, लेकिन किसकी देन है, किसकी देन है, बाबा की देन है। आप उसकी खुशबू लो, उनसे प्रेरणा लो कि मुझे भी इनके जैसा गुणवान बनना है। हमें कोई आत्मा क्यों प्रभावित करती है कि उसमें वो गुण है लेकिन मुझ में नहीं है, मुझ में वो कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो मुझे भी उस गुण को अपने में धारण करना है, अपनी उस कमी को हम दूर करेंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो जरूर उनको, उनकी आप प्रशंसा भी करो और उनको, उनके लिए मतलब महसूस करो कि हाँ इनके इस गुण से मुझे भी ऐसा गुणवान बनना है। और हमेशा बाबा को बीच में रखो, तो फिर कोई भी आत्मा में एक्स्ट्रा का जो अंश है वो प्रकट नहीं होगा, जो बाद में लगाव में बदल जाता है। और क्रोध के लिए बाबा कहते हैं कि मानो हमने क्रोध को तो जीत लिया है। कैसे जीत लिया है कि दुनिया वालों जैसे अब हम गुस्सा नहीं करते, गालियां नहीं देते, जोर जोर से नहीं चिल्लाते, चीजें उठा के नहीं फेंकते हम, है ना, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी या मेरे अनुसार नहीं हुआ या झूठ बोल रहा है कोई या कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा होता है तो अब हम उस तरह से नहीं व्यवहार करते जैसे कि पहले अज्ञानियों का हम व्यवहार देखते थे। हम चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं। समझ है, बाबा ने हमें सहन शक्ति दी है, लेकिन लेकिन अगर मन ही मन उस आत्मा के प्रति अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं हमारे, नेगेटिव वाइब्रेशन माना हम थोड़ा नाराज हो जाते हैं, अपने हाव भाव से उनको बताते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, है ना, बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, व्यवहार से बताएंगे ना कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर मेरे मन में उस आत्मा के प्रति घृणा भाव आ गया, सूक्ष्म का भाव क्या होता है वो घृणा भाव, या थोड़ा सा वैर विरोध का भाव आ गया, मन ही मन है ना वो, तो बाहर थोड़ी हम कुछ कह रहे हैं, तो बाहर से तो दिखाई दे रहा है हम सहन कर ले रहे हैं, हम बिल्कुल शांत हैं, लेकिन अंदर में भावनाएं बिल्कुल। तो जो बाबा हमें कहता है कि उस आत्मा के प्रति भी हमें रहम दिल बनना है, कोई भी आत्मा जो हमारे को गुस्सा दिलाने के निमित्त बनती है, ऐसा कर्म करती है या जो भी हमारे दिल पसंद कर्म नहीं है, समझो ऐसे ही हुआ ना, तो उससे हमें किनारा भी नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी अवस्था खराब करें, इससे तो अच्छा है थोड़ा दूर रहो, क्योंकि इनके संस्कार हमसे मिलते नहीं है, और हमसे संस्कार मिलते नहीं है तो इनसे, तो इनके साथ काम करके या इनसे बात करके तो मेरा मूड ही खराब हो जाता है, मेरी अवस्था ही कमजोर हो जाती है। तो बाबा कहता है कि किनारा करना भी घृणा का अंश है, तो किनारा करना नहीं लेकिन सहारा बनो। चलो अपने को हम सेफ रखना चाहते हैं, अपनी अवस्था को हम सेफ रखना चाहते हैं, सेफ रखो, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी ऐसे वाइब्रेशन नहीं कि ये तो है ही ऐसे, फिर हम ऐसे ही सोचने लग जाते हैं ये तो है ही ऐसे, ऐसे ही करते हैं, इनको बदलना ही नहीं है कभी, तो ऐसे संकल्प नहीं, ये उस आत्मा को श्रापित करना है, और बल्कि हमें सहयोग देना है कि बाबा जो है इस आत्मा को शक्ति दे कि ये अपने इस संस्कार को परिवर्तन कर सके, वो हमारी शुभ भावना है उसके प्रति। तो हमारी शुभ भावना का सहयोग, हमारी दुआएं उसे भी महसूस होंगी, और अगर हम रखते हैं निरंतर तो जरूर उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये हमें प्रयोग करना चाहिए। तो क्रोध का जो अंश होता है उसकी भी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, नहीं तो उसको हम समझते हैं कि ये तो होगा ही ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा, क्योंकि हमारे आसपास दो चार लोग तो ऐसे होते ही होते हैं जहां भी हम रहते हैं, चाहे घर परिवार में है चाहे काम कर रहे हैं, है ना, एक दो तो होते ही होते हैं हर एक के आसपास। तो अगर कोई ऐसी गलती करते हैं, बाबा कहते हैं माफ कर दो, आप तो क्षमा के सागर के बच्चे हो ना, किसी की बात को अपने चित्त पर थोड़ी रखना है, कोई बात होती है उस बात को फिनिश करना हमारे हाथ में है नहीं है, है ना, हमारे हाथ में है। हम छोटी बात को बड़ा बनाते हैं, बड़ी बात को हम छोटा भी बना सकते हैं, और छोटा बनाकर बिंदु भी लगा सकते हैं, पास्ट को पास्ट भी कर सकते हैं। तो हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे हमें समय पर यूज करना है, उस विकार को हम जीत लेंगे। बाबा कहते हैं विकारों का परिवर्तन कर लो, जैसे वो दिखाते हैं विष्णु जी शेष शैया पर सोए हुए हैं और जो शेष नाग है वो उनको छत्र छाया बनकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, दिखाते हैं ना कि पांच नाग जो हैं वो उनका फन उनके ऊपर वो छत्र छाया है। तो विकारों को मना, उस सांप को भी उन्होंने सेवक बना लिया, वो किसका प्रतीक है, विकारों का प्रतीक है, कि वो विकार भी सेवक बन गए, माया भी क्या बन गई, दासी बन गई। तो काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन कर लेना, क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तन कर लेना, लोभ जो आता है उसको शुभ लोभ में परिवर्तन कर लो। शुभ लोभ क्या है कि मैं बाप के समान बन जाऊं, ये भी तो लोभ है ना एक, कि हम बहुत सहज बाबा के समान बन जाएं। फिर मोह, शुद्ध मोह, एक बाबा ही मेरा है, वो मोह सबसे श्रेष्ठ मोह है। और शुद्ध अहंकार, बाबा सोमान कहता है, जो सोमान बाबा ने कहा उन शुद्ध नशे में रहना, वो शुद्ध अहंकार है। तो वो हम परिवर्तन कर ले उनको। अब जैसे लोभ दुनिया वालों जैसे लोभ ब्राह्मणों में नहीं होता है, धन कमाने का लोभ, धन के पीछे दिन रात लगे हुए हैं कि जितना हो सके जमा कर लो। हम अब अविनाशी कमाई का महत्व समझते हैं, हमें पता है कि ये धन नहीं जाने वाला, साथ में क्या जाने वाली है, ये कमाई। तो हम इसके लिए टाइम देते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हमने विस्तार कर रखा है तो उसको भी हम समेटने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग, कुछ भाई बहने जिनको लगता है हमारे पास इतना धन है कि हम आराम से खा सकते हैं, तो वो अपने को उन सब काम धंधों से फ्री करके पूरा समय बाबा के ज्ञान योग सेवा में भी लगा लेते हैं, है ना, बाबा की सेवा में समर्पित करते हैं अपने आप को, ऐसा भी करते हैं। तो ये हरेक का अपना अपना है ना, हरेक के लिए बाबा की श्रीमद बाबा कहते हैं ना, अलग है। लेकिन लोभ का अंशवंश कैसे प्रकट होता है, इस रूप में नहीं जैसे दुनिया में धन ही सब कुछ है, धन ही शक्ति है, धन के पीछे ही सब कुछ चल रहा है, नहीं। लेकिन हम रहन सहन और खान पान में थोड़ा सा आवश्यकताओं में चले जाते हैं। अब रहन सहन में हमें रहने के लिए मकान चाहिए, तो फिर सोचते हैं एक मकान तो होना ही चाहिए। अच्छा, मकान भी फिर कैसा होना चाहिए। अब एक मकान हो गया तो फिर सोचते हैं बेटा है उसके लिए भी एक मकान होना चाहिए। बाबा कहता है आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है और आपके पास साधन है, बाबा की मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता की भी हद होती है। अगर वो बेहद में चली जाती है तो वो लोभ का अंश है। अब गाड़ी है, चलो एक गाड़ी चाहिए, मानो हम सोचते हैं एक गाड़ी तो होनी चाहिए, एक गाड़ी आ गई, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी, एक मोबाइल है, ठीक है, आवश्यकता है, फिर उसके बाद अब ये नए मॉडल का मोबाइल आया है, ये ज्यादा अच्छा है, ये भी होना चाहिए मेरे पास। तो विज्ञान ने तो कितने साधन दिए हैं, अनगिनत साधन है। तो हम अपना वो अगर इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो हम भी तो उसी लाइन में आ गए ना। इच्छाओं का अंत होता है, वो कहते हैं ना कि जो सन्यासी है वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन किसमें मोह रह जाता है, वो कमंडल जो होता है उनके पास, एक कमंडल में भी अगर मोह रह गया तो वही समय पर धोखा दे देगा। तो बाबा भी यही कहते हैं कि हम भी बाबा के बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले माना बाबा ने कहा साधन है, यूज करो, मना नहीं है। मकान हो, गाड़ी हो, जो भी हमारे को सुख सुविधा के साधन विज्ञान ने दिए हैं। बाबा कहते हैं साइंस तो आपको सुख देने के लिए ही निकली है। साइंस कितने समय की है, यही 100 साल की हिस्ट्री है ना विज्ञान की, उसके पहले थोड़ी ये सब साधन थे। लेकिन कैसे यूज करना है, यूज करना है अनासक्त होकर के, न्यारे होकर के। वो साधन मुझे साधना की स्थिति से नीचे नहीं ले आए, मेरे योग को कमजोर नहीं करे। साधनों के गुलाम हो जाते ना, साधनों के वश हो जाते हैं। उसके लिए बाबा हमें सावधान करते हैं कि साधन के हम मालिक बनकर के उन्हें, वो है तो भी संतुष्ट हैं और वो नहीं है तो भी संतुष्ट हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं 36 प्रकार का भोजन हमें मिल रहा है तो भी खुश हैं, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिल रहा है खाने को तो भी राजी हैं, रह सकते हैं राजी। हाँ, नहीं तो खाने पीने का यूं होता है कि मुझे तो खाने में ऐसा ही चाहिए, बिना चावल के तो मेरे को नहीं चलता है। हाँ? या कईयों को बिना रोटी के नहीं चलता है। फिर हमें क्या चाहिए, खाने के बाद मीठा जरूर चाहिए, किसी किसी की आदत होती है, या पापड़ जरूर चाहिए, या किसी को खाने के साथ अचार जरूर चाहिए, या खाने के बाद चाय जरूर चाहिए, क्या कहेंगे। अगर हमने कोई भी ऐसी आदत बना रखी है, अभी हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन बाबा कहता है वही आपके लिए पेपर के रूप में आ जाएगा, और उस समय वो मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी अवस्था हलचल में आ जाएगी। और अवस्था हलचल में आना माना हम उस पेपर में पास हुए या फेल हुए। समय पर मुझे चाय नहीं मिली, चाय पीने की मुझे आदत है और चाय नहीं मिली, फिर मेरी स्थिति कैसी होती है। तो अभी से अपनी चेकिंग करनी है, ठीक है। अभी से हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें मुझे हलचल में ला सकती हैं। ऐसे कपड़ों के लिए बाबा कहता है, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, संग्रह वृत्ति भी लोभ का अंश है। हम एक्स्ट्रा चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, उनकी हमें इतनी जरूरत भी नहीं है। आज मेरा 2 जोड़ी 3 जोड़ी चप्पल जूते से काम चलता है और मैंने 10 जोड़ी इकट्ठा कर रखा है। मेरा 5-10 जोड़ी कपड़े से काम चलता है, मैंने 50 जोड़ी इकट्ठा कर रखा है। करते हैं ना लोग दुनिया में। तो अगर हम ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा करते हैं, वो भी लोभ का अंश वंश है। ब्रह्मा बाबा को देखें हम, बाबा अपने लौकिक जीवन में कितने संपन्न थे, सब साधन थे बाबा के पास। उस जमाने में जो भी उपलब्ध थे उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने त्याग किया, तो किया सो किया, लास्ट तक भी बाबा बिल्कुल सिंपल रहे। बाबा का कमरा हम देखते हैं ना, जाते हैं ना पांडव भवन में, बाबा का कमरा देखते हैं, कैसा है बाबा का कमरा। एक साधारण सी चारपाई है और एक गद्दी रखी हुई है, वही बाबा का कमरे में। और बाबा का कमरा उससे भी छोटा था, ये तो बाद में थोड़ा बड़ा किया उसको। एक छोटे से कमरे में बाबा लास्ट तक रहे, जबकि बाद में सब मकान बने, सबने कहा बाबा आप तो अब बन गया है ना, अब क्यों आप इस छोटे से कमरे में रहते हो। तो बाबा ने कहा नहीं, ये बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे रहेंगे। बाबा ने नहीं स्वीकार किया। बाबा का मिलने का स्थान, वो झोपड़ी इतनी साधारण सी थी, वो तो अब उसको मेंटेन किया हुआ है, अच्छे से बनाया हुआ है। उस समय में साधारण सी झोपड़ी थी, कोई बाबा के लिए कुछ लाता था। हाँ, अच्छी अच्छी चीजें बच्चे लेकर के आते थे कि बाबा का रथ है, बाबा यूज करेगा, लेकिन बाबा ने कभी यूज नहीं की। बाबा उसे बच्चों की सेवा में ही लगा देते थे, और खुद का जो पहनावा रहा, खान पान रहा, बिल्कुल सिंपल। तो हमें भी बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन मन से वो बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा इमर्ज रहे, कि वो साधन है तो भी हम संतुष्ट हैं, और नहीं है तो भी हम उतने ही संतुष्ट हैं। लोभ का विपरीत गुण कौन सा क्या है, संतुष्ट रहना। तो हर हाल में संतुष्ट हैं, हर हाल में राजी हैं, वो हमारी अवस्था को हलचल में ना लाए। फिर अगर हम मोह कहते हैं, तो मोह क्या है, लोभ का ही वो दूसरा रूप है। लोभ होता है चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छाएं माना, हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और मोह क्या है, जो मेरे पास है उस पर तो मेरा ही अधिकार है, ये हम नहीं दे सकते, इसको मोह कहते हैं। जो व्यक्ति है, मानो कोई व्यक्ति से मोह है, तो उस पर भी अपना अधिकार समझते हैं। और अगर कोई वस्तु से मोह है, जो भी साधन संपत्ति हमारे पास है, तो वो भी, उसको भी कुछ नुकसान हो जाए तो हमें बहुत मतलब तकलीफ होती है। ये मोह की निशानी है कि मोह दुख देता है, और वो दिखाई देता है सबसे ज्यादा जब किसी की मृत्यु होती है, मानो जिससे हमारा मोह होता है। मानो आज कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे लिए एक समाचार होता है, हमको किसी ने समाचार सुनाया, हमें कोई ज्यादा कष्ट महसूस नहीं होता उसका। लेकिन अगर मेरे ही मोहल्ले में रहने वाला, मेरी ही बस्ती में रहने वाला कोई जाता है दुर्घटना में, तो मुझे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा थोड़ा संबंध भी है, तो थोड़ा मोह होने के कारण थोड़ा दुख हम महसूस करते हैं। लेकिन कोई मेरे परिवार में रहने वाला, मेरा नियर एंड डियर कोई है, और अगर उसकी मृत्यु होती है तो कितना दुख होता है कि महीनों तक उसका असर दिमाग से नहीं जाता, महीनों क्या सालों तक भी वो व्यक्ति का दुख जो है वो महसूस होता रहता। कई तो उस याद को भूल ही नहीं पाते, कहेंगे कि वो दिमाग से जाता ही नहीं है। ऐसे कोई अचानक अनायास अगर ऐसी किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके बहुत मोह है हमारा, स्नेह है, ऐसा कोई चला जाता है, तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सब के साथ क्या है, हमारा सेवा का संबंध है, सब बाबा के हैं। जो भी हमारे परिवार हैं, चाहे वो लौकिक परिवार है चाहे वो अलौकिक परिवार है, सब किसके हैं, बाबा के हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इनकी सेवा के अर्थ हैं। इसलिए बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया। अभी हम ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हैं माना जिन भी आत्माओं के समीप हम रहते हैं उनकी सेवा अर्थ हमें बाबा ने रखा है। ये भाव और भावना का परिवर्तन करना हमें नष्ट मोहा बनाता है। तो ये भी हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि मोह की रगें भी बहुत सूक्ष्म होती हैं। इतनी आसानी से वो मोह की रगें नहीं कटती हैं। इसीलिए गीता में अंतिम अध्याय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसका पुराना मकान था जिसको उसे बेचना था, वो नए घर में शिफ्ट हो गए थे, तो वो दुकान में थे अपने, उनकी दुकान थी, और उतने में उनको समाचार मिला कि जो पुराना घर है उसको आग लग गई है। तो जैसे ही सुना उनको बहुत जैसे चिंता हो गई, और ना तुरंत दुकान बंद करके और गए कि कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आग बुझे, नुकसान हो जाएगा बहुत, ये तो बेचने के प्रोसेस में था है वो घर। तो देखा तो काफी जल चुका था। जब वो पहुंचे वहां तो जैसे वो सिर पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, बड़ा दुखी सा हो रहे हैं कि भाई ये घर जल गया है। तो उतने में ही उनके पड़ोसी आए और उन्होंने कहा, भाई साहब आप बहुत दुखी हो रहे हो। तो बोला, दुखी होने की तो बात है ना, ये मेरा घर जल गया, अब इतना नुकसान हो गया, इसको बेच रहे थे हम। तो उसने कहा कि आपको आपके बेटे ने बताया नहीं? तो उसने कहा, क्या? कि आपके बेटे ने तो इसकी रजिस्ट्री कर दी, इसका पूरा हिसाब किताब हो गया, ये घर बिक चुका है। तो उसने कहा, अच्छा अभी मैं बेटे से पूछ लेता हूँ। तो उसने बात किया अपने बेटे को, तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ये तो सब हो चुका है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसको आग लगी है। तो जब उसको ये समझ में आया कि अब ये घर मेरा नहीं है, ये तो बिक चुका है, और इसका जो भी पैसा भी आना था वो आ गया है, तो वो फिर निश्चिंत हो गया कि अब वो मेरा नहीं है। जब तक मेरा भाव था तब तक कितना दुख हो रहा था, और जैसे ही ये भाव खत्म हुआ कि ये मेरा नहीं है अब, ये तो किसी और का हो गया, अब वो जल गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो मेरा मेरा है उसको समाप्त करो, और उसे क्या कर दो, तेरा तेरा। सब कुछ किसका है, बाबा तो हमसे ऑफर करके जिम्मेवारी लेते हैं ना, कि अपनी सारी जिम्मेवारी, अपने सारे बोझ मुझे दे दो। जहां मेरापन आता है वहां बोझ आ जाता है। और ऐसे ही अहंकार की बात करते हैं तो बाबा ने उसको डबल अंडरलाइन किया, एक तो विकारों में भी अहंकार आता है और दूसरा निरहंकारी स्थिति में भी अहंकार की बात आएगी। तो निरहंकारी हम सब बने हैं। जैसे ही बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो जो देह का अभिमान, जो एक नशा होता है, मैं सो एंड सो हूँ, हाँ मैं जो भी इस दुनिया में हमें उपलब्धियां होती हैं, हाँ मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ या मैं बड़ा हूँ, जिस भी तरह से, वो सब अभिमान हमारे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाबा ने इस संसार में हमें ये रोल दिया है, ये कर्म है हमारा, ये कर्म हम कर रहे हैं शरीर के द्वारा। लेकिन अभिमान का सूक्ष्म अंश प्रकट होता है जो हम नहीं समझ पाते कई बार। सूक्ष्म अंश कैसे प्रकट होता है? ज्ञानी हो जाते हैं ना, हम ज्ञानी योगी हो जाते हैं तो दुनिया की आत्माओं से श्रेष्ठता तो आ ही जाती है, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, तो फिर अपने को राइट समझते हैं हर बात में, मैं राइट हूं। दूसरा कोई कुछ कहेगा तो हम उसको गलत ही समझेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है कि हम अपने नजरिए से राइट हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है, लेकिन वो अपने नजरिए से राइट हैं, तो हमें दूसरे के विचारों को भी सम्मान देना है। हर एक व्यक्ति अपने अपने नजरिए से राइट होता है, तो अगर कहां भी कोई भी व्यवहार में हमें ऐसा लगता है, जैसे ना हम फिर बहस में आ जाते हैं, उसको लेकर के हम गुस्से में आ जाते हैं, जिसको अभिमान होता है उसे अपमान की फीलिंग भी बहुत जल्दी आती है। अभिमान की एक निशानी ये भी है कि छोटी छोटी बात में किसी ने थोड़ी छोटी बात का इशारा दिया और तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे, और वो फीलिंग का असर कई दिनों तक रहेगा हमारे अंदर। और दूसरा, अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते ना, तो गलती नहीं मानेंगे। गलती नहीं मानेंगे माना, अगर मेरी गलती मैंने मान ली तो कहीं मुझे कम ना समझ लिया जाए, कहीं मेरा नाम नहीं खराब हो जाए, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर कई बार उसको बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सिद्ध करते हैं, दूसरों के ऊपर भी नाम लगा देते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि मानो आपने अपने आप को बचा लिया, ये सब करके हमने बचा लिया, आत्माओं के सामने बचा लिया, लेकिन बाबा के सामने, बाबा के सामने बचा पाएंगे? तो अल्पकाल की प्राप्ति हो गई, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। तो कहां हमारे अंदर अगर ये सिद्ध जिद करने का संस्कार, मतलब मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन वो गलती समझते हुए भी मैं अपनी गलती नहीं मानती, तो हम बाबा को देखें, बाबा कितना निरहंकारी थे। बाबा ने सदा अपने को निमित्त समझा, चाहे वो भगवान के रथ थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन सदा अपने आप को सेवाधारी कहलाया। मुरलियों में बाबा हमें कहते हैं, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सुनते हैं ना, बच्चों का मैं आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। तो हम भी कौन है? हम भी कौन है? सेवाधारी है। तो बाबा ने जैसे निमित्त निर्माण होकर के सेवा की, ऐसे हम बच्चों को भी, जहां भी हम हैं, प्रवृत्ति में हैं, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे जहां भी हम काम करते हैं, अपने को सदा निमित्त समझकर चलना। करण करावनहार बाबा है, बाबा हमसे करवा रहा है, और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो उतना ही हम निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। निराकारी हैं तो निर्विकारी होना हमारे लिए सहज होगा, और उसके साथ साथ निरहंकारी तो है ही है, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, हम स्वयं को बाप समान अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, बहुत काल का पुरुषार्थ हमें अंत में भी पास विद ऑनर बना देगा, तो हम सहज पास हो जाएंगे। ओम शांति।